ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಪ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಪ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಹಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada.
हरिनाम संकीर्तन की जय विष्णुपाद परमहंस प्रैराज्यकाचार्य अष्टोत्तरश इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रैराज्यकाचार्य अष्टोत्तरश इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्यामकुंड राधाकुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की समवेत गौरभक्तवृंद की दाई गौर प्रेमानंदे All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण तो आज हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक क्रमांक 19 गृहेश्व अविशतां चापि पुंसाम कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहा मतः गृहेष्व अविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वातायातयामानाम् न बन्धाय गृहमताः गृहेष्व अविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तायातयामानाम् न बन्धाय गृहमताः भाषांतर शब्दार्थ भाषांतर तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। गृहेषु गृहस्थ जीवन में अविशताम प्रविष्ट हुए च तथा अपि भी पुंसाम मनुष्यों का कुशल कर्म नाम शुभ कर्मों में लगे हुए मतवार्ता मेरी कथाओं में यात बीतता है यामानाम जिसका प्रत्यक्षण न नहीं बंधाय बंधन हेतु गृहा गृहस्थ जीवन मताह विचार किया गया। भाषांतर। जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं वे यह भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता है। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्मफल भगवान को अर्पित कर देता है और भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए ही सारा जीवन बिताता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य। सामान्यतः परिवार में रहते हुए व्यक्ति सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त रहता है, अर्थात वह अपने कर्मों के फलों को भोगने का प्रयास करता है। किंतु भक्त जानता है कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता तथा स्वामी है। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अतः भक्त अपने को किसी भी व्यापार का स्वामी नहीं समझता, वह सदा भगवान को ही स्वामी मानता है। अतः अपने सारे व्यापारों के फल परमेश्वर को ही अर्पित करता रहता है। अतः जो व्यक्ति इस तरह अपने परिवार तथा बच्चों के बीच रहता है वह कभी भी भौतिक संसार के कलमश से प्रभावित नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद गीता अध्याय तीसरा श्लोक क्रमांक 9 में इस प्रकार हुई है। यज्ञातार्थमनोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल भोगना चाहता है वह कर्म फल से बंध जाता है, किंतु जो व्यक्ति फल या लाभ को भगवान को अर्पित कर देता है वह उनसे नहीं बंधता। सफलता का यही रहस्य है। सामान्यतः कर्म फल से मुक्त होने के उद्देश्य से ही लोग संन्यास ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को ग्रहण नहीं करता अपितु परमेश्वर को अर्पित कर देता है वह निश्चित रूप से ही मुक्त अवस्था में रहता है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी पुष्टि भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार की है। यह यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्नावस्थासु जीवन मुक्त सउच्यते। जो व्यक्ति अपने जीवन धन वाणी बुद्धि तथा अपने पास जो कुछ भी है उसे सब उस सब से भगवान की सेवा में लगा रहता है वह हर अवस्था में मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति से रहित होकर भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं वे भवबंधन के अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें अपने सारे कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानवता के लिए महानतम वरदान है, क्योंकि यह मनुष्य को कृष्ण भक्ति में सदैव लगाए रहता है। भक्तगण कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए खाते पीते तथा सोते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगती है। कृष्ण भक्ति में लगा पूरा जीवन मनुष्य को भौतिक कलमश से बचाता है, जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज ने कहा है। कृष्ण भजने यह हय अनुकूल विषय बलिया त्यागे ता हय भूल। यदि कोई इतना सक्षम हो कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित कर सके तो उसके लिए इस भौतिक जगत का परित्याग भारी भूल होगी। मनुष्य को सीखना चाहिए कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाई जाए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का संबंध श्री कृष्ण से है। यही जीवन का असली उद्देश्य और सफलता का रहस्य है। भगवद्गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 19 में इसकी पुष्टि की गई है। तस्मात् असक्तः सततम् कार्यम कर्म समाचर असक्तो हि आचरन कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसीलिए कर्म फल में अनासक्त भाव से कर्तव्य की भांति कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर किया गया कर्म परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। भगवद्गीता के तृतीय अध्याय में इंद्रिय तृप्ति हेतु तथा परमेश्वर को प्रसन्न करने के हेतु भौतिक कार्यों पर विशेष विचार किया गया है। निष्कर्ष यह है कि ये एक जैसे नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के हेतु किए गए कार्य भौतिक बंधन के कारण है, जब तक कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए वही कार्य मुक्ति के कारण बनते हैं। वही कार्य बंधन तथा मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। दूध की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं यथा खीर रबड़ी इत्यादि खाने से कुपच हो सकता है, किंतु कुपच होते हुए भी दूध से ही बना और काली मिर्च तथा नमक से मिला मट्ठा कुपच को दूर कर देता है। दूसरे शब्दों में दूध की बनी एक वस्तु कुपच तथा अतिसार का कारण बन सकती है, किंतु दूध से ही बनी दूसरी वस्तु उसे अच्छा कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति विशेष भगवत कृपा से भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तो उसे उस ऐश्वर्य को बंधन का कारण नहीं समझना चाहिए। जब किसी प्रौढ़ भक्त को, यहाँ पे प्रौढ़ का अर्थ है मैच्योर, प्रभुपाद इंग्लिश में मैच्योर बोलते हैं, तो प्रौढ़ भक्त जो भक्ति में चढ़ा है बड़ा चढ़ा है, तो जो ऐश्वर्य लाभ होता है तो उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह इस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाने की विधि जानता है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक, ध्रुव, वैवस्वत मनु तथा महाराज इक्ष्वाकु जैसे अनेक राजा हुए हैं। ये महान राजा थे और इन पर भगवान की विशेष कृपा भी थी। यदि भक्त प्रौढ़ परिपक्व नहीं है तो भगवान उसके समस्त ऐश्वर्य को छीन लेते हैं। भगवान स्वयं इस सिद्धांत को बताते हैं। यस्याहम अनुग्रह गृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। मैं अपने भक्त पर जो सबसे पहली कृपा दिखाता हूँ वह है उसके समस्त ऐश्वर्य का हरण। जो ऐश्वर्य भक्ति में बाधक होता है उसे भगवान ले लेते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति में परिपक्व है तो वो उसे सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरुहो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं शम नमः। ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम की एक जो आज के श्लोक के ऊपर चर्चा शुरुआत करने से पहले मैं सभी वैष्णवों से कृपा आशीर्वाद की याचना करता हूँ, विशेषतः यहाँ पे जो वरिष्ठ भक्त भी उपस्थित है तो उनसे भी मैं विशेष याचना करता हूँ कि कुछ हम परंपरा में द्वारा चर्चा कर पाए। तो आज के इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रचेताओं के बीच का जो वार्तालाप है वो चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने पूरी तरह से समझा रहे कि किस तरह से श्लोक का अर्थ है, लेकिन थोड़ा सा हम और भी अपने जीवन में उसको कैसे उतार सकते हैं या समझ सकते हैं इसको हम और भी देखेंगे। तो हाल ही में मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था तो सामने एक व्यक्ति थे, उनसे बात कर रहा था। शुरुआत में इतना बात नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे कि थोड़ा उनको इंटरेस्ट आ रहा था कि कीर्तन चल रहा है, कुछ प्रसाद हो रहा है, तो बता रहे थे कि हम भी भगवद गीता पढ़ते हैं, हमें भी पता है। मैं बोला ठीक है, क्या क्या पता है? तो बताए कि भगवद गीता कर्मयोग के बारे में बोलता है, वो बताता है कर्म कैसे करना चाहिए। और मैंने बहुत सारा पढ़ा हुआ है। मैं बोला ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है? तो बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते उतना मा फलेषु कदाचन। मैं बोला ठीक है, और क्या सीखा है? नहीं, यही तो महत्वपूर्ण है ना, जीवन जीना है तो ये महत्वपूर्ण है। जीवन जीना है मतलब कर्म करते रहना है और कर्म करते रहना है। मैं बोला कौन सा कर्म करना है, कौन सा क्या? यही जो कर्म है जीवन जीना है। मैं बोला उसके आगे क्या है? तो है ना, जैसे हम हाल ही में कुछ सुन रहे थे क्लास में कि प्रभुपाद जी जब जो परदेश में गए थे तो वहाँ पे भक्तों ने मतलब वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, कृष्ण भक्ति को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि वहाँ के लोगों की स्थिति ऐसी थी कि सो रहे थे तो प्रभुपाद ने उनको उठाया। तो एक तो उठ गए या फिर वो कुछ सोते रह गए। लेकिन बोले भारत देश में बहुत समस्या हो रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई सो भी नहीं रहा है, वो क्या कर रहे हैं, सोने का नाटक हो रहा है। तो उसी तरह से अगर हम भी, सबको पता है या फिर उसका अनुभव होगा कि जैसे हम प्रचार करने जाते तो बोलते पता है भगवद गीता हमें पता है, कर्मयोग के बारे में बोलता है या फिर इसमें कर्म की व्याख्या है, कौन सा श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते, और उसके बहुत सारे पोस्टर्स या चित्र आते हैं। तो ऐसे तो एक बार ऐसे ही हमारे कुछ लोगों को मैं प्रश्न पूछ रहा था कभी कभी, तो एक कथा जो हमने सुना हुआ है कि एक राजा था, उनकी चार रानियां थी, वो चार रानियों में से तीन रानियों को बहुत विशेष प्रेम करता था। और तो उस तीन विशेष रानियों से फिर जब राजा मृत्युशय्या पे था तो उस राजा ने पूछा कि उन रानियों को, विशेषता जिनसे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता था, पहले रानी को पूछ रहा था कि मैं तो अभी मेरा समय आने वाला है, क्या आप मेरे साथ आओगे क्या? तो पहली रानी बोलती है नहीं, आपका जैसे मृत्यु हो जाएगा उसी क्षण मेरा और आपका संबंध टूट जाएगा। तो दूसरी रानी बोलती है, वही प्रश्न पूछने के बाद वो बोलती है नहीं, आप जाने के बाद दूसरे के साथ जाऊंगी। तीसरी रानी को पूछते तो बोलते है कि देखिए मैं ज्यादा ज्यादा शमशान तक आ सकती हूँ, शमशान तक, उसके आगे मैं नहीं आ सकती हूँ। तो उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन एक चौथी रानी थी जिनसे वो ज्यादा प्रेम नहीं किया, ज्यादा ध्यान कभी नहीं दिया था। तो उनको पूछते हैं क्या आप रहेंगे मेरे साथ? तो चौथी रानी बोलते कि हाँ मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। अभी ये कथा सुनने बहुत आसान है ना, तो मैंने भी ऐसे, मुझे लगा कि, तो मैंने प्रश्न पूछा था कि चार रानियां कौन है, तो सबने बराबर उत्तर दिया। पहली रानी मतलब क्या है, शरीर, कि मृत्यु के साथ शरीर नष्ट हो जाता है। उसी क्षण वो जिसके लिए इतना जिंदगी गया वो शरीर उधर ही छोड़ना पड़ता है। फिर दूसरा है, दूसरी रानी मतलब क्या है, धन, जैसे मृत्यु होता है तो धन दूसरा कोई हर लेता है, आजकल तो मृत्यु से पहले हर लेते हैं, है ना, है ना। तो या फिर कोई लोग मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते कब ये धन हर ले जाएगा। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जय श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की जय। और तीसरी रानी मतलब हमारे जो करीबी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक आ सकते हैं? शमशान तक। तो चौथे रानी, मुझे उत्तर अपेक्षित था कि परमात्मा या फिर भगवान जो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम कभी उसको ध्यान नहीं देते। लेकिन बहुत जन ने उत्तर एक ही दिया, कर्मफल। मैं बोला चौथी रानी कौन है? कर्मफल बोल रहे थे कि कर्मों का। तो मैं बोला ऐसे कैसे? तो बोल रहे थे कि हमने ऐसे भजन सुने कि भजन में चौथी रानी मतलब क्या है? कर्मफल, मतलब हमेशा आपके साथ कौन रहेगा? कर्मों के फल रहेंगे। तो ये कर्म, कर्मफल, इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं लोग, या फिर पता रहता है, लेकिन कैसे उसको साथ रहना है, उसके साथ जीना है, वो सीखते नहीं। ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, इसीलिए हम ये थोड़ा कर्मयोग समझ सकते हैं, क्योंकि नहीं तो भगवान की जो भाषा है वो समझना बहुत मुश्किल है। यहां तक अर्जुन भी द्विधा मनस्ते आते हैं, है ना? जैसे प्रभुपाद यहां बोलते हैं तीसरे अध्याय के बारे में, कर्मयोग के बारे में, तो वहां पे अर्जुन प्रश्न बोलते हैं कि व्यामिश्रेणे वाक्य न बुद्धि मोह यसियों में, मतलब उसके पहले दूसरे अध्याय में भगवान ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन अर्जुन जैसा व्यक्ति, एक भक्त है और जिनको सब कुछ पता है, वो पूछते हैं कि बुद्धि मोह यसियों में, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। तो वहां पे है ना कृष्ण कर्मयोग के बारे में बताते। तो भगवान कर्म की शुरुआत में बोलते हैं कि न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। मतलब न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि बहुत बार व्यक्ति बोलता है कर्म के बारे में बहुत मुश्किल है, कर्मफल से छुटकारा पाना चाहता हूँ, जीवन में समस्या चल रही है ना। बोले अच्छा है, आप लोगों का जीवन अच्छा है, लेकिन बाहर देखिए कितना समस्या है, कितना कार्य करना पड़ता है, कितना फल, इससे अच्छा क्या लेता हूँ? संन्यास ले लेता हूँ। लेकिन प्रभुपाद वहां पर तात्पर्य में बोलते हैं कि संन्यास आप नहीं ले सकते जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता है, तब तक, नहीं तो उत्पात कर देगा। तो अभी फिर इसका मतलब क्या है? कर्म करना कंपलसरी है क्या? तो कृष्ण ही खुद बोलते हैं, हाँ न ही कश्चित क्षण में भी जातु तिष्ठते कर्मकृत। यहां पे भगवान अकर्म के बारे में बोल रहे, वो अकर्म मतलब भक्ति के बारे में नहीं बोल रहे, बोल रहे कि कर्म ना करके, मतलब नहीं कश्चित क्षणम अपि, ऐसा एक भी क्षण नहीं होगा कि आप कर्म के बिना नहीं रह सकते, कंपलसरी इस दुनिया में आपको कर्म करना ही पड़ेगा। अभी बोलेंगे तात्पर्य, प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि क्या है उसका कारण बोल रहे, ना कि शरीर के लिए, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्योंकि शरीर में क्या है? आत्मा है, और आत्मा कभी भी पैसिव नहीं रहता, हमेशा एक्टिव रहेगा। अगर आत्मा हमेशा सदैव सक्रिय रहेगा तो कौन बोल सकता है कि मैं असक्रिय रह सकता हूं? सक्रिय रहेगा तो मतलब कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो ऐसा अगर कर्म कर रहा है, और आगे बोलते हैं भगवान, कार्यति अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण ही। मतलब ये व्यक्ति कर्म कैसे करता है? प्रकृति के अर्जित गुणों के द्वारा विवश होकर, कैसे होकर? विवश, इतना कि वो कर्म करेगा लेकिन विवश होकर। तो अभी हम देखते हैं कि भगवान बोलते हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा और वो आपको कंपलसरी है, तो बहुत मुश्किल है ना। अभी इस जीवन में कर्म करना है तो भगवान बोलते हैं किम कर्म किम अकर्मेति, तो अभी वहां पे होता है क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। तो अगर हम उसको समझेंगे तो हमारे जीवन में हम कर्म कर ही नहीं रहे, क्योंकि कर्म का अर्थ क्या रहता है? जो वैदिक शास्त्रों के द्वारा क्या है बताया गया है, उसको क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं, उसी को कर्म बोलते हैं ना। तो अभी तो हम न्यू वैदिक कल्चरल सेंटर में रह रहे हैं, लेकिन क्या हम देखते हैं कि कल्चरल है क्या, वैदिक कल्चर है क्या? अभी जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना सब इस भौतिक दुनिया में कलियुग के प्रभाव के कारण सब अभी एक साथ, एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुका है। तो फिर करेंगे तो क्या करेंगे? और जो भी कर रहे हैं मतलब विकर्म हो रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन रह जाता है अकर्म। इसी के लिए प्रभुपाद हर जगह पे भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, कि भगवान की भक्ति करो, वही एक अच्छा एक बराबर तरीका है जिसके द्वारा हम मुक्त हो सकते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं, तो भगवान तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे से एक के बाद एक बताते हैं। तो वही होता है कि जब तक शुरुआत में बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जिस तरह से इस बार यहाँ पे चर्चा हो रही है गृहस्थ आश्रम के बारे में, अभी व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम में रहता है तो उसको भी अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, और इन सबको रख के ही कार्य भी करना पड़ेगा। तो उसको चिंता हो सकता है कि क्या उसके कर्म फल बंधन का कारण बनेंगे। तो प्रभुपाद वही बोलते हैं कि हाँ, कि अगर परिवार में रहते हैं तो हम अपने कर्मों से अत्यधिक असक्त हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने कर्मों के फलों को भोगने का प्रयास करता है। ये वास्तविकता है कि अगर खुद के लिए वो कर्मों के फल को भोगने का प्रयास करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, बंध जाएगा। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्त जानता है कृष्ण क्या है, परम भोक्ता है, भोक्ता आराम यज्ञ तपस्याम। अभी भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं, एक सुविधा दे रहे भक्ति करने के लिए। बहुत बार हम भगवान के पास आते हैं किसके लिए, हमें कुछ चाहिए तो, है ना, लेकिन ये नहीं समझ सकते कि कभी कभी हम जो चाहिए उसकी वजह से हम क्या बन जाते हैं, यहाँ पे बंधन कारण बन जाते हैं। लेकिन अगर हम पूछेंगे भगवान को कि हमारे लिए क्या जरूरी है, तो फिर वो भगवान हमें देंगे। लेकिन ये कौन मांग सकता है, भक्ति ही मांग सकता है, क्योंकि उसका जो स्मरण रहता है या फिर हमेशा चिंतन रहता है वो किस तरह से, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, हमेशा किसके बारे में सोच रहे हैं, भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं। और उसको पता है कि हर एक चीज़ का कारण कौन है और उसका प्रसन्न करना किनको करना है, भगवान को करना है, तभी वो क्या कर सकता है, संसार के कलमश से मुक्त हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि बहुत बार प्रश्न बोलते हैं कि अच्छा है विरक्त जीवन जिएंगे तो क्या हो सकता है, हम इस जीवन से टूट सक, मतलब अच्छे से कर्मफल से मुक्त पा सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं बहुत सारे भक्तों का, या फिर हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, वो क्या थे, गृहस्थ थे, है ना, जैसे जनक महाराज, पृथु महाराज, वैवस्वत मनु, इनके बारे में प्रभुपाद बता रहे। तो वो भी इस दुनिया में रहे, ध्रुव महाराज, लेकिन उन्होंने क्या किया अपने कार्यों को, या फिर अम्बरीश महाराज करते रहे लेकिन उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। ये तो उदाहरण सबको पता है कि किस तरह से अम्बरीश महाराज की भक्ति को प्रस्तुत किया गया था। दुर्वास मुनि वो क्या थे, योगी थे, अभी उनके ऐसा कोई वैराग्य हो सकता है, लेकिन भगवान बताते किस तरह से भक्त ही उनको प्रसन्न कर सकता है ना, साधवे हृदय मह्यम, भगवान वहां बताते हैं कि मेरे हृदय में कौन रहते हैं, साधु। बहुत बार, एक बार जब मैं स्कूल्स में संस्कृत सीखता था तो वहां पे रहता था शब्द साधु, तो साधु यह शब्द सुनने का तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है, साधु शब्द का अर्थ क्या है कि कोई जिसने गेरवा वस्त्र धारण किया वह साधु है, लेकिन भगवान बताते कि साधु का अर्थ क्या है, भक्त। अभी भक्त का अर्थ उसका बारे में कभी भगवान का जो कैटेगराइजेशन है वो बहुत बड़ा है, 11वें स्कंद में पढ़ते तो पूरा कैटेगरी देते हैं कहां से कहां तक, कोई पशु है, पक्षी है, ये है, वो है, ऐसे है, गंधर्व है, किन्नर है, है ना, यहां तक कि जो गोपी है उनको भी उस कैटेगरी में डालते। फिर आगे वो बताते कि जो कोई मेरे पास किस भावना से आता है, कोई असुर है, कोई राक्षस है, लेकिन जो मेरे पास भक्ति में आता है उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो भगवान ने, मतलब भगवान का हृदय कितना ये है, मतलब ब्रॉड माइंडेड है, विशाल है। इसी के लिए तो बोलते हैं ना कि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तो शुरुआत कहाँ से होता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा होती है तो वहाँ पे, है ना, अभी ये करुणा अलग है, बाकी कोरोना है ना, बाकी जगह वायरस फैल रहा है जैसे कोरोना वायरस। मैंने जब पहले सुना तो मुझे लगा करुणा, फिर बाद में चला करुणा नहीं, कोरोना। तो हाँ, अभी जो अगर कार्य करना है तो प्रभुपाद आगे बताते, या हस्य हरिदास से कर्मना मनसा गिरा निकला सबसे वस्थासु जीवन मुक्त हस्य उच्चते। जीवन मुक्त कैसा है, जिस तरह से नारियल का उदाहरण है, नारियल जैसे पूरा सूख जाता है तो नारियल के अंदर है, लेकिन वो नारियल से भी अलग है, वैसे हमने आवाज सुने कट 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 कर आवाज आते हैं, लेकिन इस दुनिया में है, लेकिन इस दुनिया से संबंधित भी नहीं, वो जीवन मुक्त है। तो अभी ये ऐसे भक्त है, ऐसा जीवन लग सुनने में लग सकता है कि कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि हमें ऐसे भक्तों का दर्शन हो जाता है, बहुत हर रोज होते हैं। 50-55 साल से भक्ति कर रहे हैं, उनके जब हम देखते हैं तो लगता है अरे ये भक्ति सच में है ना, उनको जब उत्साह देखते हैं तो बोलते अभी तक क्या उत्साह है ना, मतलब उम्र देख रहे समझ में नहीं आएगा सच में इतना उम्र है और इतना उत्साह। तो यही तो है, मतलब क्या है, वो इस जीवन में है लेकिन इस जीवन से मुक्त भी है। हाँ, शरीर के साथ कार्य कर रहे लेकिन क्या कर रहे, अपने पूरे जो चेतना है वो किसमें, भगवान की भक्ति में है, उसको देखकर ही तो सब कुछ चलता, यही जीवन मुक्त है। और इतने सारे जीवन मुक्त भक्तों का हमें संग मिलता है। तो ये जीवन मुक्त कैसे बन सकते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं कि अरे हाँ, इस भौतिक दुनिया में जैसे कुछ कार्य है या चीजें हैं उनसे हमारा स्पर्श हो जाता है तो क्या हो जाता है, यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नए एवते न आद्यंतवंत कहते न तेषु रमते बुधा। तो यहां पे अगर ऐसी चीजें हैं जिनसे स्पर्श हो जाएगा तो क्या बन सकता है, दुख का कारण बन सकती है। लेकिन लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का एक जो ये है बोलते कि कृष्ण भजन यहा है अनुकूल विषय बलिया त्यागे ताया है भूल। मतलब युक्त वैराग्य के बारे में बोल रहे कि इस दुनिया में भी कुछ चीजें हैं उसको क्या करना चाहिए, सब है वो भगवान के ही संबंधित है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा, हमारे वो वैराग्य हो जाएगा और वही उन चीजों का अच्छे से उपयोग में लाया जाएगा। प्रभुपाद जी को एक बार वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिखाए गए थे, उसमें दिखा रहे थे कि एक सन्यासी है जिसके सामने धन रखा है लेकिन वो ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब दूर दूर। तो प्रभुपाद जी उसको देखकर बोले वो कौन न्यूज़ रिपोर्टर है, बोले उसको यहाँ पे बुलाओ, और कौन है जो इतना धन अर्पित कर रहा है, बोला उस धन को लेकर आओ और न्यूज़ रिपोर्टर को लेकर आओ, मैं उस पूरा धन को ऐसे पकड़ लूंगा और मेरा उसके साथ फोटो निकालो, बोलते। अब ये कैसे बोल सकते हैं, ऐसे कैसे, लोग तो बोलते कि धन से दूर होना चाहिए, नहीं, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से उसको धन को भगवान की सेवा में लगाना है। प्रभुपाद तो एक बार प्रश्न पूछा गया कि प्रभुपाद यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पैसे का खर्चा हो रहा है, पैसा नहीं है। प्रभुपाद बोले ठीक है। तब तक एक दूसरे जन आए, बोले प्रभुपाद भाई और मर्सी, मतलब आपकी कृपा से इतने सारा पुस्तक वितरण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इतना सारा पैसा कलेक्शन हुआ है। तो बोले देखो इतना सारा पैसा आ गया, चेक साइन कर दे, ये ले लो पैसा आ गया। तो प्रभुपाद बोले पैसा आ गया, चला गया, उसके बीच में मेरा क्या काम है, वो भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये है कि किस तरह से वो जो सारी चीज़ों को किसके देखते हैं, भगवान से संबंधित देखते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो उसके व्याख्या में वही प्रभुपाद आगे बताते हैं कि अपना हर एक जो कार्य करना है वो किस तरह से अनासक्त भाव से करना है। वही भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसी कौनते तत्कृष्व मद अर्पणम। बोले जो भी कर रहे हो, जो भी कार्य करने का प्रयास कर रहे हो, कृपया उसको क्या करो, तत्कृष्व वो आप करो, किसे, मद अर्पणम, मुझे अर्पण कर कर। तो वही कार्य मुक्ति का कारण बन जाते हैं। और उसके लिए प्रभुपाद उदाहरण देते किसका, कि दूध के जो पदार्थ अगर ज्यादा तरह से खाया जाए, मतलब कोई खीर वगैरह खा रहा है दूध का और बहुत ज्यादा खा रहा है, तो कभी कभी पेट में अपच हो सकता है। तो अगर पेट का अपच दूर करना है तो वही दूध से जो दही बनता है, अगर थोड़ा सा काला नमक डाल के या काली मिर्च, प्रभुपाद बोल रहे, तो वो क्या कर देता है, ठीक कर देता है। बहुत विशेष है, वही दूध है लेकिन एक क्या कर रहा है, पेट को अपच कर रहा है और दूसरा उसको ठीक कर रहा है, ऐसे कर। तो इसी तरह से इस भौतिक दुनिया में सारी चीजें जो है वो बंधन का कारण बनती है और वही चीजें क्या मुक्ति का कारण बन जाती है। और ये हमारे लिए विशेष कृपा है कि हमें पता चल रहा है कि कम से कम प्रभुपाद जी ने सिखाया है, प्रैक्टिस करवा रहे है ना। तो जब मैं एक बार वो कोलकाता गया था तो वहाँ पे एक म्यूजियम है ना, जो बाग बाजार मंदिर में, तो उस म्यूजियम में आप देखेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कोट वगैरह पहनते वो देख सकते हैं, या फिर वहाँ पे फोटो है कि वो उन्होंने क्या किया है, गाड़ी के पास खड़े है, तो ये देख के लग सकता है भक्ति, अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे वैरागी कौन हो सकता है ना। लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो कोट भी पहन रहे, कुछ अलग ही है। तो ये जब राधा कुंड पे जब देखा था लोगों ने, वहां के बाबा जियों ने, तो बोले ये क्या है, ये ऐसा है, हमने तो सुना था वो बहुत बड़े वैरागी है और ये गाड़ी से उतर रहे। लेकिन वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब शाम को कथा देते थे तो पूरा संन्यास वस्त्र वगैरह धारण कर तो सब लोग कथा सुनने के लिए आए, लेकिन कथा सुनाते वक्त सबको लगा कि अभी क्या सुनाएंगे, कुछ रासलीला ये वगैरह कुछ नहीं, भगवद गीता श्रीमद भागवतम उसके बारे में बता रहे और बता रहे किस तरह से हम भौतिक गुणों के द्वारा बाध्य किए जाते हैं। तो ये क्या है, ये कौन सी वार्ता है ना, या क्योंकि आप इस श्लोक में शब्द आता है वार्ता, तो कृष्ण बताते हैं, सॉरी यहाँ पे भाषांतर में ऐसा है कि जो क्या करते हैं मेरे बारे में सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, वार्ता मत वार्ता है ना। इस जीवन में बहुत सारी वार्ताएं सुनते हैं कि बाहर की दुनिया में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं मतलब वही ट्रेन में देख रहा था, तो ये व्यक्ति क्या कर रहा था, बहुत न्यूज़ देख रहा था। तो मैं बोला न्यूज क्यों देख रहे आप, नहीं बोला एक ऐसा ऐसा हुआ था तो उसके बारे में न्यूज देख रहा हूँ। मैं तो बोला वो तो न्यूज होके चला गया, वापस क्यों देख रहे हो, नहीं नहीं मैं उसको जानना चाहता हूँ। मैं बोला जिसका आपके साथ संबंध नहीं है और जो ऑलरेडी होके गया है उसके बारे में सुन के आप क्या करने वाले हो, नहीं नहीं बहुत दुख हो रहा है ये सुन के। तो मैं बोला वही तो समस्या है, जिसका कुछ संबंध नहीं हो सुन के आप क्यों दुखित हो रहे हो, मतलब हमारे सुख और दुख का कारण कौन बन रहे, हम खुद बन रहे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं नकारार्थी भाषा बार बार सुन रहे हैं। और यही समस्या हो जाता है कि हमारे सुख और दुख होने का, कभी कभी व्यक्ति सुखी रहता है लेकिन दूसरा आके बोलता है हरे कृष्णा नहीं कोई भी, अरे तुमने सुना क्या ऐसा ऐसा हुआ, बोला हाँ, बोला बताना जरूरी था क्या, तो बोलता है नहीं नहीं, मैं बोला कि पता हो तो अच्छी बात है। तो शुरुआत में वो अच्छा लगता है, लेकिन अगर जब भक्ति में आगे देखते तो प्रयास करना चाहिए कि उसे दूर जाना चाहिए, क्योंकि वो कौवे जैसा एक स्थिति हो जाता है, कौवे जैसा, कौवा क्या करता है सड़े हुए चीज़ों के बारे में ही मतलब उधर ही जगह ज़्यादा घूमता रहता है। लेकिन हंस जैसा व्यक्ति क्या, उसको पता नहीं क्या कहाँ पे सड़ा हुआ है, लेकिन वो वहाँ से दूर चला जाता है। तो भक्तों के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा कि मत वार्ता मतलब कृष्ण कथा सुनना पड़ेगा। मैं कभी कभी बात करता हूँ, तो वहाँ पे कल एक लड़के से बात कर रहा था, तो बता रहा था प्रभु जी ये हो रहा है वैसे हो रहा है, ऐसा दुख है वो दुख है, बहुत समस्या आ रहा है। तो मैं बोला आपने मतलब भक्ति और प्रभु के क्लास में आता है मुझे पता है, तो बोला आप कब उनसे मिले थे लास्ट में, नहीं नहीं प्रभु जी उनके साथ संबंध होके बहुत दिन हो गए। बोले आप उनका क्लास कब सुना था, कब उनके बारे में, तो मतलब क्या है जब तक हम कृष्ण कथा नहीं सुनते या फिर कृष्ण कीर्तन नहीं करते वो जीवन में व्यथा आता रहेगा। और ये हम सबके लिए, इसी के लिए तो बोला है कि हर रोज हमें क्या करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया, यही भक्ति है यही वार्ता है, वो क्या कर सकता है हमें इस जीवन से मुक्त करवा सकता है, नहीं तो इस जीवन की वार्ताएं हमें इस जीवन से बंध करती, बंधन का कारण करती रहेगी। और इसी के लिए भगवान भी क्या करते हैं, हाँ अगर भक्त तो बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ तो भगवान क्या करेंगे उसके लिए विशेष कृपा दिखाएंगे, उसके लिए जो अच्छा नहीं है वो निकाल देंगे, लेकिन अगर भगवान की सेवा में लगा रहे तो उसको दे भी देंगे, है ना। तो ये बहुत विशेष है कि हमारे इस परंपरा में हमें चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के बारे में सुनने के लिए मिलता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, उन्होंने आके इतनी सुंदर लीलाएं की, अभी उनकी सारी लीलाओं में महत्वपूर्ण जो सहभागी व्यक्ति है वो कौन है, गृहस्थ ही है। तो हाल ही में मैं एक श्लोक पढ़ रहा था, तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला में है 10 नंबर के अध्याय में पहला श्लोक है, तो उस अध्याय का नाम है चैतन्य वृक्ष की शाखा और उपशाखा है। वो क्या है, श्री चैतन्य पदाम भोज मधुभ्यो नमो नमः कथंचित आश्रयाद एशाम स्वापि तद्गंध भाग भाग भवेत। तो वहां पे जो इसका भाषांतर बहुत सुंदर है, जो अनुवाद है, तो वहां पे ये बता रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि मैं भ्रमरों के उस समान उन भक्तों के चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करता हूं जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के मधु का निरंतर आस्वादन करते हैं। मतलब क्या करे, श्री चैतन्य पदाम्बोज मधु फेभ्यो, उनको क्या कर रहे हो, उसको निरंतर आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन बोलते हैं कथनचित आश्रयात एशाम, मतलब अगर किसी ने ऐसे भक्तों का आश्रय लिया, श्वापी तद्गंध भाग भवेत, मतलब क्या होता है, यदि कुत्ते जैसा अभक्त भी किसी प्रकार ऐसे भक्तों के शरण में पहुंच जाता है तो उसे भी कमल की फूल की सुगंधि, मतलब भगवान के उस चरण कमलों के जो मधु है उसका आश्रय, मतलब उसका उसका आस्वादन कर सकता है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते तात्पर्य में, जो मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा। इस संबंध में कुत्ते का दृष्टांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः कुत्ता किसी समय भक्त नहीं बनता, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि भक्त का कुत्ता भी धीरे धीरे भक्त बन जाता है। हमने वास्तव में देखा है कि कुत्ते में तुलसी के पौधे के लिए भी कोई आदर नहीं होता, बल्कि वह स्वभाववश तुलसी के पौधे पर पेशाब करना चाहता है। अतः वह कुत्ता पहले दर्जे का अभक्त है। देखिए प्रभुपाद बोलते हैं फर्स्ट क्लास नॉन डिवोटी, इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन इतना प्रबल है कि कुत्ते जैसा अभक्त भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त की संगति से धीरे धीरे भक्त बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु के एक महान गृहस्थ भक्त श्रील शिवानंद सेन जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो एक कुत्ता उनसे आकर्षित होकर उनके साथ चल पड़ा। यह कुत्ता उनके साथ चलता रहा और अंत में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जा पहुंचा, फलतः उसको मोक्ष मिल गया। इसी प्रकार श्रीवास ठाकुर के घर के कुत्ते तथा बिल्लियां भी मोक्ष लाभ प्राप्त कर सके। बिल्लियों कुत्तों तथा अन्य पशुओं से भक्त बनने की आशा नहीं की जाती, किंतु शुद्ध भक्त की संगति में इनका भी उद्धार हो जाता है। तो देखिए कितनी कृपा है हमारे ऊपर। चैतन्य महाप्रभु के पास डायरेक्ट जाएंगे तो इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन देखते हैं कि उनके जो भक्त है कितने दयालु है, है ना। देखिए ये जो दोनों उदाहरण है, श्रीवास ठाकुर और शिवानंद सेन, तो प्रभुपाद वाले उनके घर के बिल्ली तथा कुत्तों का भी उद्धार किया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए उनके घर एक दिन तो बोले, श्रीवास तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हारा सब ख्याल मैं रखूंगा, तुम डरने की जरूरत नहीं है, चाहे तो मैं उस राजा से जाके बात करूंगा जो आपको परेशान करेगा। तो श्रीवास ठाकुर बोलते मुझे क्या समस्या है, आप है तो मुझे क्या समस्या। तो वहां पे वो छोटी सी उनकी जो नीस, मतलब क्या बोलते मराठी में पुतनी बोलते, भांजी भतीजी नारायणी आती है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते नारायणी को बोलते हाथ, नारायणी कृष्ण बोलो, हरि 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 कृष्ण बोलो। तो वो नारायणी कृष्णा 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 करके ये करते। तो वो नारायणी को उनके गर्भ से किनका जन्म हुआ था, वृंदावन दास ठाकुर, जिन चैतन्य भागवत लिखा है। एक दिन श्रीवास ठाकुर के घर में ही जो महाप्रकाश लीला चल रहा था 21 घंटे तक, 7 प्रहर तक चल रहा था, उस लीला में चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के ऊपर क्या कर रहे थे, बहुत सारा अपना कृपा वर्षाव कर रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा एक स्त्री को, एक वृद्ध स्त्री को, जो क्या कर रही थी, पानी भर रही थी श्रीवास ठाकुर जी का। तो उन्होंने पूछा ये कौन है, बोले इनका नाम दुखी है। दुखी, बोले दुखी जो कृष्ण की सेवा में कर रहे हो, दुखी कैसे हो सकते, वो कौन है, सुखी है। तो चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर कृपा वर्षा कर दिया। तो ना कि इस मनुष्यों के ऊपर, लेकिन एक शिवानंद सेन, देखिए वो भी गृहस्थ है, लेकिन उन्होंने अपना सारा धन प्राण सब संपत्ति किसके लिए लगाया, भगवान की सेवा के लिए। और वो इतने अच्छे से यात्रा का आयोजन करते थे कि किसी को भी कुछ कमी नहीं होना चाहिए। तो वो शिवानंद सेन है ना, तो एक बार जा रहे थे तो उनके साथ वो एक कुत्ता आ गया पीछे पीछे। तो वो शिवानंद सेन जब बोट में जा रहे थे सबको लेकर, तो कुत्ते को भी बोट में लेना था, तो वो बोट वाले ने बोला इसके लिए ज्यादा कीमत देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, इसके लिए ज्यादा कौड़ियां, मतलब ज्यादा उन्होंने उसका धन देना पड़ा। तो शिवानंद सेन ने उसके कृपा वर्षाव किया कि अरे नहीं नहीं इसको भी कनेक्ट करना चाहिए, ये कुत्ता है ये भक्ति नहीं करेगा। कभी कभी बोलते हैं मनुष्य है भक्ति कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, शुद्ध भक्ति ये भी देखती है कि अरे प्राणी भी भक्ति कर सकते, कुत्ते जैसा। प्रभुपाद बोलते हैं नंबर वन नॉन डिवोटी, उसको भी देखिए भक्त है, लेकिन कैसे देखता है, इसको भी भक्त बनाना है। तो वो भक्त की कृपा होगी तो देखिए, हाँ वो गृहस्थ है, धन संपत्ति अर्जन कर रहे हैं, सब सेवा में लगे हैं, लेकिन भगवान देखिए वो संबंध, शिवानंद सेन की कृपा उनके ऊपर हो गया। शिवानंद सेन बोले बाद में कुत्ता दिख नहीं रहे कहा है, तो उनको बहुत बुरा लग रहा था मैं उसकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, कहा गया कहा गया। देखिए सेवा भाव कितना उच्च स्तर का है। लेकिन जब उन्होंने देखा वो कुत्ते को किनके साथ, भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो यही है हमारे जीवन में, यही आशा हम करें कि हमारे जीवन में भी, मतलब हमारा जीवन कैसे है हम सबको पता है उस, तो हमारे ऊपर भी ऐसे भक्तों की कृपा हो जाए तभी हमें वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। या फिर तो एक बहुत विशेष है कि हमारे जो आचार्य है, हमारे जो गुरुवर्य है, हमसे इतना क्या करते हैं, कृपा का वर्षाव करते हैं, इतना प्रेम करते हैं और हमेशा हमेशा हमें उठाने का प्रयास करते हैं, तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। और जो कुत्ते की जैसी चेतना होती है उससे निकल कर, है ना, बाहर निकल कर भगवान की सेवा भाव में लगकर भक्ति अच्छे से कर सके, तो यही, इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे और हमारे आचार्य भी प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो वो जो करुणा है वो ये है, वो किनके आचार्यों में है। तो प्रार्थना करें कि हम सब भी क्या करें, एक दूसरे के साथ अच्छे से संबंध रखकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। और मुझसे भी कुछ, मैंने कुछ ज़्यादा बोला होगा तो उसके लिए कृपया माफ करें। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की।